ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। संसद ने आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा के पश्चात सदन ने ध्वनिमत से इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की। राज्यसभा इसे कल ही पारित कर चुकी है। लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के प्रशासनिक ढांचे में आवश्यक स्पष्टता और सुव्यवस्था प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विभिन्न पदोन्नति समितियों के माध्यम से समय समय पर पदोन्नति सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक सीएपीएफ के समूह ए के अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में विनियमन से संबंधित है। सीएपीएफ के किसी भी वर्ग के अहित में ये नहीं है। गृह राज्य मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। सरकार का कहना है कि यह विधेयक केंद्रीय सशस्त्र बलों के काडर के प्रबंधन के लिए लाया गया है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा ने सरकार से कहा कि इस विधेयक पर गहन चर्चा और मंथन करने की आवश्यकता है, फिर जो सहमति बने उस आधार पर निर्णय लिया जाए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार ने बलों के अधिकारियों से बात नहीं की है और ये विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद राव राजेंद्र सिंह ने विधेयक को सशस्त्र बलों में अनुशासन लाने वाला और उनका मनोबल बढ़ाने वाला बताया। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीमा पर और आंतरिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हैं और ऐसे बलों के लिए मजबूत प्रशासनिक ढांचा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विधेयक उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी सांसद ने कहा कि विधेयक अधिकारियों को भरोसा दिलाएगा कि करियर में प्रगति एक विशिष्ट ढांचे के अंतर्गत होगी। जनता दल यूनाइटेड की लवली आनंद ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस विधेयक के कानून बनने से सीएपीएफ का मनोबल ऊंचा रहेगा। सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार सारे बलों में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को लाकर बैठाना चाहती है और इस तरह विपरीत परिस्थितियों में काम करने का अनुभव रखने वाले बलों के अधिकारियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि सरकार सीएपीएफ के कर्मियों की आवाज नहीं सुनना चाहती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस विधेयक को लाने से पहले इन बलों के अधिकारियों से परामर्श नहीं किया जो इस विषय के हितधारक हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नक्सलियों के सफाये का दावा करने के बाद उसने इस विधेयक के माध्यम से केंद्रीय बलों के भविष्य की संभावनाओं का सफाया कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सीआरपीएफ और दूसरे अन्य केंद्रीय बलों के साथ अन्याय किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विष्णु दयाल राम ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और काडर प्रबंधन को बेहतर बनाएगा। तेलुगुदेशम पार्टी के कृष्णा प्रसाद तेनेटी ने कहा कि केंद्र सरकार को केंद्रीय बलों में रिक्तियों को भरना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने का वादा किया था जिसे दोनों नेताओं ने पूरा किया है। श्री तेनेटी का कहना था कि ये प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शिवसेना उभाटा के संजय देशमुख ने कहा कि प्रतिनियुक्ति के माध्यम से दूसरे अधिकारी को सीएपीएफ में लाना इन सशस्त्र बलों के अधिकारियों के साथ अन्याय है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के मोहिते पाटिल ने दावा किया कि इस विधेयक के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। निर्दलीय सदस्य उमेश भाई पटेल ने विधेयक को संसद की स्थायी समिति को भेजने का आग्रह किया। इससे पहले शून्यकाल में लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए गए। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिहार के नालंदा में एक महिला के साथ सरेआम छेड़छाड़ कर उसे सड़क पर घुमाने का विषय उठाया और कहा कि इस मामले की त्वरित कार्रवाई हो ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। समाजवादी पार्टी के राम शिरोमणि वर्मा ने शून्यकाल में कहा कि सरकार और निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनाव में एक ही मतदाता सूची हो। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की कथित बेअदबी की घटनाओं का विषय उठाया। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब में गैंगस्टर और आतंकवादियों के कथित गठजोड़ का विषय उठाया और कहा कि केंद्र को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कुछ अन्य सदस्यों ने भी शून्यकाल में अपने अपने क्षेत्र के और लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य प्रशांत पडोले ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि सांसद क्षेत्र विकास निधि एम्पीलैड को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की बांसुरी स्वराज ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण SIR के दौरान 7 न्यायिक अधिकारियों का घेराव किए जाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र का दमन है। श्रीमती स्वराज ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कल पश्चिम बंगाल के मालदा इलाके में एक बहुत ही संगीन घटना हुई है जहां लोकतंत्र का दमन हुआ है। उन्होंने कहा कि SIR के लिए जो न्यायिक अधिकारी गए थे उनका घंटों तक तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा लोगों ने घेराव किए रखा, खासकर महिला अधिकारियों का। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की थी कि यह कानून व्यवस्था की पूर्ण विफलता है। उन्होंने कहा कि मेरी मांग है कि हम एक स्पष्ट संदेश दें। मैं केंद्र से आग्रह करती हूं कि इस प्रकार की अराजकता पश्चिम बंगाल में हमें स्वीकार नहीं है।
और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा प्रियंका अरोड़ा से। लेखिका हैं PTI भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा ने आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा तथा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के जवाब के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे कल ही पारित कर चुकी है। इसी के साथ अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने संबंधी विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख घटक दल तेलुगु देशम पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने की दिशा में इस विधेयक को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश विधानसभा में 28 मार्च 2026 को एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें भारत सरकार से राज्य की राजधानी के रूप में अमरावती को वैधानिक दर्जा दिलाने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की कुछ धाराओं में संशोधन करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि विधेयक में ये उपबंध किया गया है कि निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर अमरावती एक नई राजधानी होगी। श्री राय ने सदन को बताया कि राज्य विधानसभा के 28 मार्च 2026 के संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती के संबंध में वैधानिक स्पष्टता लाने के उद्देश्य से 2014 के अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसके अनुसार विधेयक के कानून बनने के बाद अमरावती को 2 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की राजधानी माना जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की रेणुका चौधरी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के साथ संसद में किए गए वायदों को पूरा किया जाना चाहिए। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए नागर विमानन मंत्री और तेलुगु देशम पार्टी नेता के राममोहन नायडू ने कहा कि भारत के इतिहास में आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास विभाजन के बाद कोई राजधानी नहीं है। श्री नायडू ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के शासनकाल में अमरावती को राज्य की राजधानी नहीं बनाने के निर्णय के खिलाफ वहां की महिलाओं ने शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि यह राजधानी कृष्णा नदी के तट पर बनाई जा रही है। श्री नायडू ने कहा कि यह विश्व स्तरीय राजधानी होगी और दुनिया भर के लोग इसमें निवेश करने आएंगे। चर्चा में भाजपा के लक्ष्मण, रायागा कृष्णैया, पाका विकेट सत्यनारायण, बीजू जनता दल के निरंजन बिशी, तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नदीमुल हक, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाई वेंकट सुब्बा रेड्डी, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के आर सुरेश रेड्डी, रविचंद्र वद्दी राजू, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीधा और साना सतीश बाबू, आम आदमी पार्टी के डॉ सुदीप कुमार पाठक और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी हिस्सा लिया। ज्यादातर सदस्यों ने अपनी बात तेलुगु में रखी। इससे पहले सदन की बैठक शुरू होने पर आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए गए और फिर शून्यकाल हुआ। शून्यकाल में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर के प्रबंधन का मुद्दा उठाते हुए मांग की कि इसका नियंत्रण बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सौंपा जाए। उन्होंने गया के हवाई अड्डे का नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखने की मांग भी की तथा इसे सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक भावना से जुड़ा विषय बताया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजलाल ने सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट सीसैट को खत्म करने या तर्कसंगत बनाने की मांग करते हुए कहा कि ये परीक्षा सिविल सेवाओं में विविधता के रास्ते में बाधा बन रही है। श्री ब्रजलाल ने सरकार से मांग की कि या तो सीसैट को समाप्त किया जाए या इसे इस तरह तर्कसंगत बनाया जाए कि इंजीनियरिंग, विज्ञान, चिकित्सा और कला वर्ग सभी पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान ने कश्मीरी भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग की। शून्यकाल में ही राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, एमएनएफ सदस्य के विलम पना, भाजपा के भीम सिंह, सुमेर सिंह सोलंकी, नबाम रेबिया, महाराजा संजाओबा लेशम्बा, आदित्य प्रसाद, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा, कांग्रेस के नीरज डांगी और रेणुका चौधरी ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। सदन में आज प्रश्नकाल के बाद भोजन अवकाश नहीं लिया गया और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई तथा इसे पारित किया गया। इस विधेयक पर चर्चा से पहले संसद में महिला आरक्षण विधेयक लागू करने के लिए लोकसभा में सीटें बढ़ाने के उद्देश्य से एक विधेयक लाने के संकेतों के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन को सूचित किया कि सदन की बैठक आज स्थगित होगी और जल्द ही बहुत महत्वपूर्ण विधेयक के लिए पुनः बैठक होगी। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि किसी विधेयक को कब पेश किया जाना है इसका निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा सरकार की योजना के बारे में पूछे जाने पर श्री रिजिजू ने कहा कि राज्यसभा में आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक और जनविश्वास धारा संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए लिया जाएगा। संसद के बजट सत्र के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बजट सत्र के दूसरे चरण का आज अंतिम दिन है। श्री रिजिजू ने कहा कि हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये विपक्ष के साथ भी साझा किया गया है। अगले 2 से 3 हफ्तों में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लाने वाले हैं। आज सरकार सदन को स्थगित करने का प्रस्ताव रखेगी और हम जल्द ही फिर मिलेंगे, उद्देश्य सदस्यों को ज्ञात है। सरकार महिलाओं के आरक्षण कानून को लागू करने के लिए और लोकसभा की सीटों को 546 से बढ़ाकर 861 करने के उद्देश्य से जनगणना से संबद्ध परिसीमन को अलग करने के लिए 2 विधेयक लाने की खातिर विपक्ष के साथ बातचीत कर रही है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि सरकार का इरादा सर्वदलीय बैठक बुलाने का है और विपक्ष की मांग है कि ये बैठक 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद बुलाई जाए। इस पर श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार देश की महिलाओं के साथ किए गए वायदे को पूरा करने के लिए बाध्य है। इसके बाद सदन में सदस्यों के विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए और फिर सदन की बैठक 16 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।